अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 16 है, नॉवेल डॉक्टर दुआगु, पेशकश मोहम्मद अजहर, मुसन्निफ इब्ने सफी। तो आइए सुनते हैं पार्ट 16। इमरान अपने हलक से डरी डरी से आवाजें निकालने लगा। वैसे जेब से रिवॉल्वर भी निकल आया था। अब पूरी बात इसकी समझ में आई। कैदी हलाक कर दिया गया था। गालिबन ट्रांसमीटर पर इसने सिर्फ पैगाम नशा ही नहीं किया था, बल्कि किसी का जवाबी पैगाम वसूल भी किया था, जिसके मुताबिक कैदी को ठिकाने ही लगा दिया गया था और खुद इसका मसला भी शायद ज़ेरे गौर था। बताओ तुम कौन हो, अंधेरे में फिर आवाज़ गूंजी। मैं यानी कि मैं, इमरान हकलाया। हाँ तुम। जी मैं तस्दीक हसन खंजर अम्बालवी हूँ। बकवास बंद करो, ठीक ठीक बताओ। यकीन ना हो तो वो शेर सुन लीजिए जो अभी अभी हुआ है। जबान का शेर सुनिए। कल अगयार में बैठे थे तुम। हाँ हाँ कोई बात बनाओ। शायद तुम भी इसी तरह मरना चाहते हो, वो गुर्राया। इमरान चाहता था तो आवाज़ ही पर फायर करके इसका काम तमाम कर देता, लेकिन इसने इतनी मेहनत इसलिए नहीं की थी कि वो फिर फिरता तारीकियों में भटकता रह जाए। पहले एक आदमी हाथ लगा जिसके तौसित से मुजरिम या मुजरिमों तक पहुंचने की तवक्का थी, लेकिन अब शायद इसकी लाश ही वहां अंधेरे में मौजूद थी। और अब दूसरा आदमी यानी इस कैदी कातिल गिरफ्त में था, और वो यकीनी तौर पर कोई अहम आदमी था, वरना इस इकदाम की जुरात हरगिज ना करता। बताओ तुम कौन हो और इसे किस इमारत में कैद किया गया है, वो फिर धाड़ा। मैं अपना नाम तखलुस आपको बता चुका हूँ, नमूने का शेर भी पेश कर दिया। वो इमारत तो वो इस झोपड़े से बहरहाल बेहतर थी, ठाए ठाए तो नहीं करनी पड़ती थी। शायद तुम सच कुछ मानना चाहते हो भाई, अंधेरे में ना मरना। इमरान घुगियाया। चिराग जला लो तो बेहतर है, अंधेरे में मरते वक्त दम घुटने लगता है और बड़ी उलझन होती है। क्यों शामत आई है? अंधेरे में कुछ नहीं हो सकता, चिराग जलाओ, फिर जो कुछ भी पूछोगे दूंगा। अच्छा ठहरो, इमरान संभल कर बैठ गया, रिवॉल्वर जेब में डाल लिया था और आहिस्ता आहिस्ता उठ रहा था। उधर जैसे इसने दिया सलाई खींची और रोशनी हुई, इमरान ने अपने जख्म की परवाह किए बगैर उस पर छलांग लगा दी। मुकाबला इसके लिए कतई तैयार नहीं था, इसलिए उसे संभलने की मोहलत ना मिल सकी। लड़खड़ा कर गिरा और इमरान से दबोच में बैठा था। चिराग जल नहीं सका था, दिया सलाई इसके हाथ में बुझ गई थी और अब वो इमरान के नीचे दबा हुआ उसे उछाल फेंकने की कोशिश कर रहा था। और इमरान की कोशिश थी कि किसी तरह वो आसानी से काबू में आ जाए। ऐसे जद्दोजहद के दौरान में उसके सर के बाल इमरान की गिरफ्त में आ गए। इसने इन्हें सख्ती से मुट्ठी में जकड़ लिया और धड़ाधड़ इसका सर जमीन से टकराने लगा। घुटी घुटी सी चीखें अंधेरे में गूंजती रही और वह आहिस्ता आहिस्ता सुस्त होता गया, फिर बिल्कुल ही बेहस और हरकत हो गया। इमरान ने इसका चढ़े चढ़े ही टटोल कर दिया सलाई की डिबिया तलाश की और एक तीली जलाकर इसका जायजा लिया। वो गहरी गहरी सांस ले रहा था। जब अच्छी तरह इत्मीनान हो गया कि वो वाकई बेहोश है, तो इमरान उसे छोड़कर हट गया और चिराग रोशन करके कैदी पर नजर डाली, जो जमीन पर औंधा पड़ा था। गोली इसकी खोपड़ी पर मारी गई थी। आसपास खूनी खून फैला हुआ था। मुख्तसर सी तलाशी के बाद इमरान ने महदूद दायरा अमल वाला ट्रांसमीटर बरामद कर लिया जो बैटरी से चलता था। फिर इसने ये मुनासिब समझा कि बेहोश आदमी को झोपड़े से हटा दे। तलाश के दौरान में एक टॉर्च भी हाथ लगी थी। उसने बेहोश आदमी के हाथ और पैर बांधे, खून उसके बाजू का जख्म बुरी तरह दुख रहा था। इसके बावजूद भी इसने किसी न किसी तरह बेहोश आदमी को पुश्त पर लाद कर करीबी झाड़ियों में पहुंचा दिया और खुद भी एक जानिब दबक रहा। उसे यकीन है कि कोई ना कोई वहां जरूर आएगा, क्योंकि वहां से बरामद होने वाला ट्रांसमीटर 20 मील के अंदर ही अंदर कारामद हो सकता था। इसलिए इस पर भेजे जाने वाले पैगाम का यही मतलब हो सकता था कि इसने करीब ही कि किसी आदमी को हालात से मुतला किया है। आधा घंटा गुजर गया लेकिन किसी किस्म की आवाज ना सुनाई दी। इधर इसका कैदी भी समसमाने लगा, हलक से आवाजें भी निकाली थी, शायद वो पूरी तरह होश में आ चुका था। इमरान ने उसके शाने पर रिवॉल्वर की नाल रखकर थोड़ा सा सांस और सर्व करते हुए कहा, चुपचाप पड़े रहो बेटे, अगर हल्की सी आवाज भी निकाली तो साइलेंसर लगा हुआ है, खिलौना तुम्हें हमेशा के लिए खामोश कर देगा। फिर वो साथ भी हो गया। इमरान झोपड़े से निकलते वक्त 2 कंबल लाना नहीं भूला था, एक खुद इसके इस्तेमाल में था और दूसरा इसने अपनी कैदी में डाल दिया था। मैं कहा हूं, कैदी ने कुछ देर बाद मुजहिमिल से आवाज में पूछा, झोपड़े से थोड़े ही फासले पर झाड़ियों में। क्यों? मुझे इन लोगों का इंतजार है जिन्हें तुमने ट्रांसमीटर पर पैगाम भेजा था। कोई नहीं आएगा, मुझे सिर्फ हुक्म मिला था कि इसे गोली मारकर तुम्हें गिरफ्तार कर लूं। अच्छा, फर्ज करो तुमने मुझे गिरफ्तार कर लिया, फिर मैं कुछ नहीं जानता, आखिर तुम गिरफ्तार करके करते क्या? उनके दूसरे हुक्म का मुंतजर रहता। किन के? मैं नहीं जानता, पिछले दिन मैंने तुम्हारे ही जैसे एक जिद्दी आदमी के दोनों कान काट दिए थे, इमरान ने बड़े खलूस से कहा। कैदी कुछ ना बोला। इमरान भी थोड़ी देर तक कुछ सोचता रहा, फिर कैदी के चेहरे पर रोशनी डालता हुआ बोला, अपना मुंह खोलो। कि क्यों? जल्दी करो, इमरान गुदाया। कैदी ने जल्दी से मुंह खोल दिया और इमरान इसमें अपना रुमाल ठूसने लगा। उसका जिस्म मुतहरिक था लेकिन हाथ पैर नहीं हिला सकता था, क्योंकि वो बुरी तरह जकड़े हुए थे, हाथ पैर बंधे गए थे और बाएं करवट पड़ा हुआ था। अब इमरान फिर झोपड़े की तरफ मुतवज्जा हुआ। वहां से बरामद होने वाला ट्रांसमीटर वहीं छोड़ आया था। पेट के बल रींगता हुआ झोपड़े में पहुंचा। यहाँ हालात बदस्तूर थे। ट्रांसमीटर बाएं हाथ में संभाल कर फिर इसी तरह वापिस हुआ। दाहिने हाथ में रिवॉल्वर था। कैदी को जैसा छोड़कर गया था उसी पोजीशन में मिला। इमरान ने इसके चेहरे पर टॉर्च की रोशनी डाली और उसने चुनिया कर आंखें बंद कर ली। फिर इमरान ने ट्रांसमीटर का स्विच ऑन कर दिया। साई साई की आवाजें सुनाई देती रही। कुछ देर बाद किसी आदमी की आवाज उभरी, 638 638, इट इज हेडक्वार्टर 638, रेस्पा पॉन्ड 638 एज हेडक्वार्टर। इमरान ने फिर स्विच ऑफ कर दिया और कैदी के मुंह से रुमाल खींचता हुआ बोला, क्या ये कॉल तुम्हारे लिए थी? वो कुछ ना बोला और इमरान ने इसकी नाक पर हाथ रखकर किसी कदर दबाव डाला। ये क्या कर रहे हो? कैदी को राकर चीखा। बटन दबाए बगैर आवाज कहाँ से निकलती है? इमरान चहकारा। अब अगर तुमने बोलने में देर लगाई तो फिक्स कर देने वाले बटन दबाऊंगा और तुम बोलते ही चले जाओगे। जरा मेरे हाथ खोल दो फिर बताओ। कैदी किसी खटकने कुत्ते की तरह गुर्राया। मैं तो तुम्हें दूल्हा भी बना सकता हूँ लेकिन तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। हाँ, वो कॉल मेरे लिए ही थी। फिर मैं ट्रांसमीटर का स्विच ऑन करने जा रहा हूँ, तुम अपने हेडक्वार्टर से गुफ्तगू करोगे और इन्हें बताओगे कि तुमने अपने साथी को मार डाला और मुझे भी बेबस कर चुके हो। तुम मजबूर नहीं कर सकते। इमरान ने रिवॉल्वर के दस्ते से उसके घुटने पर ज़र्ब लगाई और मुंह पर जमा दिया। वो मचलने लगा लेकिन कोरा की आवाज़ ना निकल सकी, क्योंकि मुंह पर भी इमरान की गिरफ्त मजबूत थी। इसने दूसरे घुटने पर भी जरब लगाई। फिर तो बेतुकान उसके दोनों घुटने और पिंडलियों की हड्डियों पर कयामत तोड़ता धारा। कुछ देर बाद जब इसने इसके मुंह पर से हाथ हटाया तो वो दबी दबी सी सिसकियां ले रहा था। शायद इस पर रस्सी तारी हो रही थी। इमरान ने पतलून की जेब से चिंगम का पैकेट निकाला और उसमें से एक पीस निकाल कर मुंह में डाल दिया। चिंगम से शौक करोगे, इसने झुक कर इसके कान में कहा। इस गरीब उलवतनी में इससे ज्यादा खातिर ना कर सकूंगा। वो कुछ ना बोला, फिर बेहिस हरकत हो गया। इमरान ने ट्रांसमीटर का स्विच ऑन कर दिया लेकिन आवाज का हुजुम नहीं बढ़ाया। 638 की पुकार बराबर हो रही थी। इस बार इसने स्विच ऑफ करके ट्रांसमीटर को कैदी के चेहरे के करीब रख दिया। रेडियम डायल वाली घड़ी देखी, 4 बज रहे थे। जो कुछ भी करना था उजाला फैलने से कबल ही कर गुजरना था। अब सोच रहा था कि कैदी को इतनी बेदर्दी से ना मारना चाहिए था। अब तो इसके भी इम्कानात थे कि जबान बंद रखने के लिए वो होश में आ जाने के बावजूद भी खुद को बेहोशी पोज करता रहता। थोड़ी देर बाद इसे 2-3 छींकें आईं और वह आहिस्ता आहिस्ता कुदाने लगा। मुझे बताओ तुम्हारी बोतल झोपड़ी में कहाँ रखी है, इमरान ने हमदर्दाना लहजे में कहा। मुझे यकीन है कि तुम इसकी जरूरत महसूस कर रहे हो। हाँ, वो कुदाहा, लकड़ी के संदूक में। इमरान तेजी से झाड़ियों के बाहर रिंग गया और फिर वापसी 2 मिनट से ज्यादा नहीं सर्फ हुए। ब्रांडी की आधी बोतल थी। कॉक निकालकर उसके होठों से लगा दी और इस वक्त तक नहीं हटाई जब तक कि कैदी ने अपने सर को झटका नहीं दिया। अब तुम हवास में रहकर अकलमंदी का सबूत दे सकोगे, इमरान खुश होकर बोला। कैदी कुछ ना बोला, घेरी घेरी सांस ले रहा था। क्या तुम्हें याद है मैंने क्या कहा था? हाँ, आवाज किसी जख्मी भेड़िए की गुर्राहट से मुशाबा थी। मैं ट्रांसमीटर का स्विच ऑन करने जा रहा हूँ, कॉल होने पर तुम वही कहोगे जो मैं कह चुका हूँ, समझे? कैदी कुछ ना बोला। इमरान ने ट्रांसमीटर का स्विच ऑन कर दिया। कुछ देर बाद फिर 638 की पुकार हुई और कैदी भराई आवाज में बोला, इट इज 638, मैंने इसका काम तमाम कर दिया। दूसरा मेरा कैदी है, ओवर। तुम इसे वहीं रखो, कुछ देर बाद इंतजाम किया जा सकेगा, ओवर एंड ऑल। आवाज फिर नहीं आई। इमरान ने स्विच ऑफ करके पूछा, और पियोगे? ओह, इसने गुस्सली सी आवाज हलक से निकाली। इमरान ने फिर बोतल इसके होठों से लगा दी। कुछ देर खामोशी रही, फिर इमरान ने कहा, गालिबन अब कोई तुम्हारी कैद के लिए आएगा। वो खामोश ही रहा। क्या वो सब तुम्हें पहचानते हैं, इमरान ने पूछा। हाँ, खैर अब तुम ये बताओ, फांसी का फंदा पसंद करोगे या सरकारी गवाह बनना? मैं मौत से नहीं डरता, शादी से पहले मैं भी नहीं डरता था, इमरान ने कहा। लेकिन शादी के बाद से ना सिर्फ मौत से डरने लगा हूँ बल्कि मुख्तलिफ किस्म की हिदायत नामे भी पढ़ने लगा हूँ। वैसे मेरा ख्याल है कि तुम फांसी का फंदा नहीं पसंद करोगे। वो फिर कुछ ना बोला। मैं भी क्यों ना तुम्हारी खोपड़ी में गोली ही मार दूं, थोड़ी देर बाद इमरान ने कहा। बके जाओ, मुझे किसी बात की भी परवाह नहीं है। अगर फिर मैं शुरू हो जाऊं, इमरान बड़बड़ाया, इस बार तुम्हारे दांतों की मजबूती आजमाऊंगा। नहीं नहीं, कैदी बौखलाए हुए अंदाज में बोला, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मुझे कौन रोकेगा? मैं नहीं समझ सकता है कि तुम क्या चाहते हो। हेडक्वार्टर का पता बताओ। मैं नहीं जानता, यकीन करो हमेशा ट्रांसमीटर ही पर उनसे गुफ्तगू होती है। महकमा जंगला से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? वॉचमैन हूँ। मगर तुम तो पढ़े लिखे आदमी मालूम होते हो। इस मुलाजमत से कबल ही मेरा इनसे ताल्लुक रहा है। इनकी हिदायत पर मैंने ये मुलाजमत इख्तियार की थी। उनके हाथ किस तरह पड़े थे? लंबी कहानी है, मैं सुनना पसंद करूंगा। मैं एक मकामी फिल्म में कैशियर था। एक बार ना जाने कैसे 50,000 का घपला हो गया, जिसकी एक पाई भी मेरी जात पर सर्फ नहीं हुई थी। ऑडिटर ने उससे चेक कर लिया और मुझे जेल भिजवाने की धमकी दी। इन दोनों में बेहद शरीफ या दूसरे लफ्जों में बुजदिल था, डर गया। फिर ऑडिटर ही ने तजवीज़ पेश की कि मैं एक ग्रोह के लिए काम करूं जो स्मगलिंग करता है, इस तरह ही कमी पूरी कर दी जाएगी। मैं तैयार हो गया था, फिर जब अच्छी तरह दलदल में फंस चुका तो मालूम हुआ कि स्मगलर नहीं बल्कि गैर मुल्की एजेंट थे और मैं मुल्क और कौम से गद्दारी का मुरतकिब हो रहा हूँ। लेकिन अब क्या हो सकता था, पूरी तरह इनकी गिरफ्त में था। हेडक्वार्टर कहाँ है? यकीन करो दोस्त, मेरे फरिश्तों को भी इल्म नहीं। ज़रा बोतल इधर बढ़ाना। ज़रूर ज़रूर, इमरान ने बोतल इसके होठों से लगा दी। दो तीन घूंट लेकर इसने सर को झटका दिया और इमरान ने बोतल हटा ली। तुम्हारे जिम्मे क्या काम है? महकमा जंगलात के एक ऑफिसर से कुछ पैगाम मिलते हैं जिन्हें मैं कोड वर्ड्स में बजरिया ट्रांसमीटर हेडक्वार्टर तक पहुंचा देता हूँ। क्या कभी किसी गैर मुल्की से भी साबका पड़ा है? कभी नहीं। यह आदमी जिसे तुमने गोली मार दी है कौन था? महकमा जंगलात का वही ऑफिसर जिसके पैगाम हेडक्वार्टर तक पहुंचाता था, और हेडक्वार्टर के पैगाम उस तक। क्यों? हाँ, क्या तुम जानते हो कि इसने लेफ्टिनेंट बनकर एक आदमी के अगवा का प्रोग्राम बनाया था? इसने प्रोग्राम नहीं बनाया था, बल्कि ये प्रोग्राम मेरे तौसुस से इसे हेडक्वार्टर की तरफ से मिला था। कोडवर्ड्स की ट्रेनिंग तुम्हें कहाँ से मिली थी? उसी ऑडिटर से जिसने मुझ पर गबन का केस करने की धमकी दी थी। वो अब कहाँ मिल सकेगा? इसी फ्रेम में। नाम बताओ। तुम पहले ये बताओ कि अब मेरा क्या हशर होगा? अकलमंदी से काम लेने का वादा करो तो तुम्हारी गर्दन बचाने का वादा मैं कर लूंगा। मैं तैयार हूँ। इमरान कुछ सोचता हुआ बोला, क्या मुझे यहाँ रुककर हेडक्वार्टर के आदमी का इंतजार करना चाहिए? फजूल है, कैदी ने कहा, कोई नहीं आएगा। फिर तुम मुझे उन तक किस तरह पहुंचाते? वो जवाब में कुछ कहने ही वाला था कि इमरान ने इसके मुंह पर हाथ रख दिया। उसे किसी किस्म की आवाज सुनी थी, कोई झाड़ियों के बाहर चल रहा था। इमरान ने झांक कर देखा, तारों की छांव में एक दराज का आदमी नजर आया जो झोपड़े की तरफ जा रहा था। इमरान ने आखिरी बार झोपड़े का चिराग नहीं बुझाया था। उसने इस आदमी को झोपड़े में दाखिल होते देखा और खुद भी तेजी से हर्रिंग हो गया। रिवॉल्वर का दस्ता मजबूती से इसकी मुट्ठी में जकड़ा हुआ था। झोपड़े तक पहुंचने में देर नहीं लगी। उसने दरवाजे से झांका, आने वाले की पुश उसकी तरफ थी और वो कैदी की लाश पर झुका हुआ था। फिर जैसे ही वो सीधा होने लगा, इमरान तेजी से पीछे हटकर फिर जमीन पर लेट गया। वो झोपड़े के बाहर आ चुका था। फिर इसने आहिस्ता से आवाज दी, 638, तुम कहाँ हो? लेकिन ये आवाज इमरान की खोपड़ी हो इसे बातें करने लगी तो किसी औरत की इंतहाई सुरीली आवाज थी। उसने फिर 638 को पुकारा। आवाज इतनी बुलंद थी कि झाड़ियों तक जरूर पहुंची होगी जहां 638 रस्सियों से टकरा पड़ा था। दफ्तर इमरान ने हलक से भराई आवाज निकाली, अंदर चलो अंदर चलो। तुम कहाँ हो? फिर पूछा गया। अंदर चलो, इमरान ने फिर उसी लहजे में कहा और वो झोपड़े में चली गई। इन लोगों के तरीकार को पेश नजर रखते हुए इमरान ने सोचा कि वो 638 से ज़ाती तौर पर शायद ही वाकिफ हो सकता है, कभी इसकी शक्ल तक ना देखी होगी। जैसे ही वो झोपड़े में दाखिल हुआ, वो चौंक कर मुड़ी। दराज कद और खुश शक्ल औरत थी। हाथ पैर खासे मजबूत मालूम होते थे। उम्र भी ज्यादा नहीं थी, बमुश्किल 25 या 26 की होगी। जैकेट और चुस्त पतलून में मलबूस थी। कैरी कहाँ है? इसने पूछा और इमरान ने इत्मीनान की सांस ली। वो हकीकतन 638 से वाकिफ नहीं थी। यू आर आइडेंटी? इमरान ने सख्त लहजे में पूछा। 974 फॉर हेडक्वार्टर्स। फारिया फ्राम, इमरान ने आंखें निकाली। फार्मों से घुटी गुर्राई तन्हा आई हो। हाँ, कैदी कहाँ है, इसे बेहोश करके गाड़ी तक पहुंचा दो। वो वहां झाड़ियों में पड़ा है, यहाँ रखना मुनासिब नहीं समझा था। उसे यहाँ लाओ। बहुत बेहतर, तुम बैठ जाओ। इमरान ने स्टूल की तरफ इशारा किया और बाहर निकल गया। वो झाड़ियों में वापस आया और कैदी से बोला, कोई औरत आई है? कैदी को यहाँ से ले जाने के लिए, वो तुम्हें सूरत से नहीं पहचानती, इसलिए मैंने खुद को बहैसियत 638 पेश किया है और तुम्हें कैदी की सूरत में उसके सामने ले जाऊंगा। इससे फायदा, उसने ऐसा से कहा। मेरा दावा है कि तुम इस तरह हेडक्वार्टर तक हरगिज ना पहुंच सकोगे। इमरान चंद लम्हे इस पर गौर करता रहा, फिर बोला, फिर तुम क्या कहना चाहते हो? मैं इस जिंदगी से तंग आ गया हूँ। इन्होंने मुझे फरेब देकर फांसा था। अरसे से ख्वाहिश थी कि किसी तरह इनका बेड़ा गर्क हो और इसमें मेरा नुमाया हिस्सा हो। मुझे अपनी जगह पर ही रहने दो और मुझसे रابطہ कायम रखो। इस तरह इन चूहों को इनकी बिल्लों से निकाला जा सकेगा। इस औरत को जहां चाहे ले जाओ, मुझसे पूछा जाएगा तो कह दूंगा कि कोई औरत यहाँ सदे से आई ही नहीं। एक बूढ़ा आदमी था जो कैदी को हेडक्वार्टर के हवाले से ले गया था। तजवीज़ माकूल है, लेकिन इसकी क्या जमानत है कि तुम हमारा ही साथ दोगे? फिलहाल मैं किसी तरह भी यकीन ना दिला सकूंगा। अच्छी बात है, फिलहाल मैं जो कुछ कर रहा हूँ मुझे करने दो। इमरान ने उसे उठाकर पेट पर लादा और झोपड़े में ले आया। औरत उठती हुई बोली, उसे गाड़ी तक पहुंचा दो। ओके मादाम, इमरान दरवाजे की तरफ मुड़ता हुआ बोला। कैदी उसकी पुश्त पर लदा हुआ था। कुछ दूर चलने के बाद वो सड़क पर आए। खुद औरत ही ने रहनुमाई की थी, लेकिन इमरान इस रास्ते से नहीं आया था। काफी वक्त सर्फ हुआ था यहाँ तक पहुंचने में। गाड़ी एक छोटी सी वैन थी। इमरान ने औरत से कहा कि वो ड्राइवर की सीट पर बैठे। वो पिछला दरवाजा खोल चुका था। कैदी जमीन पर था, औरत अगली सीट पर जा बैठी। इमरान ने जल्दी से इसके हाथ पैर खोल दिए और इस तरह दरवाजा बंद किया कि आवाज पैदा हो। कैदी आजाद हो चुका था। अब इमरान तेजी से आगे झपटा और ड्राइवर की सीट के बराबर वाला दूसरा दरवाजा खोलकर औरत के पास बैठ गया। क्या मतलब, औरत ने चौंक कर कहा। चलो तुम, उसने हैरत से कहा, मुझसे ये नहीं कहा गया। देखो हनी, इमरान ठंडी सांस लेकर बोला, ये जो चीज तुम्हारी कमर में चुभ रही है 45 की करके रिवॉल्वर की नाल है, लिहाजा जिधर कहोगे चुपचाप चली चलूंगी, वरना ये खाली भी नहीं है। फिर इसने 638 को आवाज देकर कहा, उस लाश को उठा लाओ, ले जाऊंगा। तुम कौन हो? औरत हकलाई। अपना वक्त जाया ना करो, खामोश बैठो, इमरान गुर्राया। रिवॉल्वर की नाल वस्तुतः तो औरत की कमर से लगी हुई थी। थोड़ी देर बाद वैन के पिछले दरवाजे के खुलने और फिर बंद होने की आवाज आई। गुड, इमरान बुलंद आवाज में बोला, अब अपना नाम भी बताते जाओ। राजन चौधरी, बाहर से आवाज आई। गुड क्वीन बेबी, इमरान ने रिवॉल्वर की नाल दबाव डाला। इंजन स्टार्ट हुआ और वैन चल पड़ी। इमरान इसे मुख्तलिफ सड़कों पर गाड़ी मोड़ने की हिदायत देता हुआ सीधा दानिश मंजिल लाया और इसी तरह कमर से रिवॉल्वर लगाए हुए नीचे उतरने का हुक्म दिया। कुछ देर बाद वो साउंड प्रूफ कमरे में पहुंच चुकी थी, लेकिन इसे के चेहरे के जरा बराबर भी खौफ नहीं जाहिर हो रहा था। बैठ जाओ, इमरान ने तहकमाना लहजे में कहा और वो बड़े पुरवकार अंदाज में चलती हुई सोफे की तरफ बढ़ी। इमरान सोच रहा था कहीं बसात का ये मोहरा भी फजूली साबित हो। अब बताओ, इमरान ने कहा। क्या बताऊँ, गुस्सीले अंदाज में गुर्राई, तुम किसके लिए काम कर रही हो? क्या मतलब, तुम्हें किसने भेजा था? तुम्हारा दिमाग सही है या नहीं, उसने आंखें निकाल कर कहा। किसी ने भेजा है या तुम जबरदस्ती पकड़ लाए हो? मैं एक सुनसान सड़क से गुजर रही थी, तुमने हाथ उठाकर गाड़ी रुकवाई, फिर करीब आए और रिवॉल्वर निकाल लिया। तुम्हारे साथ 3 आदमी और भी थे, इन्होंने एक लाश उठा रखी थी। लाश इन्होंने मेरी वैन में रख दी और तुम रिवॉल्वर के जोर से मेरे करीब बैठ गए और ड्राइव करने पर मजबूर करते हुए यहाँ तक लाए। पता नहीं तुम क्या चाहते हो, इमरान ने ठंडी सांस ली और अहमकाना अंदाज में मुंह चलाने लगा। सफेद घनी दाढ़ी तो कभी के चेहरे से अलग हो चुकी थी और अब अपनी असल सूरत में उसके सामने मौजूद था। मैं कहती हूँ मुझे जाने दो, वरना अच्छा नहीं होगा, वो दांत पीस कर बोली। ये वैन किसकी है, इमरान ने पूछा। मेरी है, और किसकी होती, क्या काम करती हो, बकवास बंद करो, बिल्कुल उजड़ मालूम होते हो। मुआज़्ज़ज़ ख़वातीन से गुफ्तगू करने का सलीका नहीं है तुम्हें, कोई मुआज़्ज़ज़ खातून में ये कमी पूरी करा देगी, इमरान ने मुस्करा कर कहा। फिर भी अपने सवाल का जवाब जरूर चाहूंगा, क्या मैं कोई गिरी पड़ी औरत हूं कि काम काज करती फिरूं। ये बात भी माकूल है, इमरान सर हिलाकर बोला। मैं फिर कहती हूँ मुझे जाने दो, मुअज्जज़ ख़वातीन की बेहद इज्जत करता हूँ, इसलिए काफी एजाज और कराम के साथ वापस करूंगा। मुतमईन रहो, ये बताओ कि इन लोगों के चक्कर में कैसे फंसी थी। किन लोगों के, जिनका हुक्म सुनकर ये भला देना पड़ता है कि तुम एक मुअज्जज़ खातून हो, तुम यकीनन नशे में हो। मुअज्जज़ ख़वातीन को देखकर बगैर पिए भी अक्सर बहक जाता हूँ, तुम इसकी परवाह ना करो, शायद तुम्हारी शामत ही आ गई है। क्या तुमने कभी समिया रजुलद्दीन का नाम सुना है? गालिबन वो जो बहुत मशहूर सोशल वर्कर हैं, खान बहादुर रजुलद्दीन की बेगम साहिबा। मैं समिया रजुलद्दीन हूँ। गुड, तब तो मुश्किल आसान हो गई। मैं रजी साहब आपको फोन करके यहाँ बुलाए लेता हूँ। कि क्या बकवास कर रहे हो, मैं अपना इत्मीनान कर लेना चाहता हूँ मोहतरमा, इमरान ने ठंडी सांस लेकर कहा। पिछले दिनों एक साहिबा ने खुद को प्राइम मिनिस्टर की बीवी जाहिर करके मुझसे 12:30 आने ईंट लिए थे। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ, अगर वो खुद आकर तस्दीक कर दे तो क्या बुराई है। मेरे ख्याल से सोशल वर्कर होने का ये मतलब तो नहीं है कि आप 12 बजे रात के बाद शहर में वैन लिए फिरें, जबकि खान बहादुर साहब के पास कई बड़ी शानदार कारें भी मौजूद हैं। शायद वही आपसे पूछ सके कि वैन घसीटते फिरने की जरूरत क्यों पेश आई। वो खामोश हो गई। ठीक है, खदोखार किसी कदर ढीले पड़ गए थे, कुछ देर पहले की दीदा दिलेरी दम तोड़ती नजर आ रही थी। आप यही तशरीफ रखिए मोहतरमा, इमरान दरवाजे की तरफ बढ़ता हुआ बोला। मैं दूसरे कमरे में जाकर खान बहादुर को फोन करूंगा, नंबर डायरेक्टरी में देख लूंगा। ठहरो, वो हाथ उठाकर बोली। जल्दी कहिए जो कुछ कहना हो, मेरे पास वक्त नहीं है। औरत थूक निकल कर रह गई। इमरान इस्तफामाई अंदाज में से देखता रहा। इन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया था, वो कुछ देर बाद बोली। बहुत पुरानी कहानी है, इमरान ने लापरवाही से शानों को जब्बी दी। फिर मुझे क्या कहना चाहिए, तुम क्या पूछना चाहते हो, औरत झुंझला गई। मैं ये कतई नहीं जानना चाहता कि तुम्हें किस सिलसिले में ब्लैकमेल किया गया है, ब्लैकमेलर का नाम और पता बताओ। यही तो मैं नहीं जानती। अच्छा, उसी का नाम और पता बताओ जिसके सिलसिले में ब्लैकमेल की जाती रही हो। क्या मतलब, उसने फिर आंखें निकाली। किसी बूढ़े की जवान बीवी भला किस सिलसिले में ब्लैकमेल की जा सकती है। इमरान के होठों पर तंजिया सी मुस्कुराहट थी और वो उसकी आंखों में देखे जा रहा था। आखिरकार उसने कहा, इसे दिल गुदे की हो तो ब्लैकमेल क्यों होती रही हो। वो फिर बैठ गई। अब उसकी नजरें फर्श पर थी। इमरान ने कुछ देर बाद कहा, हो सकता है इस ब्लैकमेलिंग में उसी का साथ हो जिसके लिए तुम ब्लैकमेल की जा रही हो। नामुमकिन है, औरत की जबान से गैर इरादी तौर पर निकला। क्या उम्र होगी तुम्हारी, तुमसे मतलब, औरत बहुत झुल्ला गई। 27 साल, इमरान उसकी आंखों में देखता हुआ मुस्कुराया। 30 साल तक तो खुद फरेबी की उम्र कहलाती है, इसलिए अगर तुम भी अपने या किसी दूसरे के ताल्लुक खुशफहमी में मुबतला हो तो यह हैरत की बात नहीं। पास 16 यहाँ पर इस्तेमाल पजीर होता है, नॉवल डॉक्टर दुआगु का बकिया हिस्सा पार्ट 17 में समाप्त फरमाइए।